नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने मनरेगा के मजदूरों को बकाया भुगतान के लिए 2100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में किशनगंज से जदयू के जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने अपने समर्थकों के साथ पार्टी से इस्तीफा दिया। भाजपा वक्फ संशोधन कानून के फायदों को लेकर 5 मई तक अभियान चलाएगी। विभिन्न प्रखंडों में लोगों से सीधा संवाद किया जाएगा। और रेलवे ने मधुबनी से पटना के बीच नमो भारत एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन को मंजूरी दी। सहरसा से मुंबई के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस भी चलेगी। अब समाचार विस्तार से। मनरेगा के तहत मजदूरों के बकाया भुगतान के लिए केंद्र सरकार ने बिहार के लिए 2100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि इससे 12 लाख से अधिक मजदूरों के बकाया राशि का भुगतान हो सकेगा। राशि के अभाव में पिछले वर्ष 27 दिसंबर से मजदूरों को भुगतान बंद था। इस राशि में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के श्रमिकों के लिए 450 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान होगा। वहीं अन्य वर्ग के श्रमिकों के लिए लगभग 1600 करोड़ रुपए की मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। श्री चौधरी ने इसे 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री की बिहार यात्रा से पहले एक बड़ी सौगात बताया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मीडिया के लिए विषय वस्तु तैयार करने वाले लोगों और उनकी अर्थव्यवस्था में आमूलचूल बदलाव हो रहा है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स से पहले श्री वैष्णव ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रौद्योगिकी के साथ पुराना मॉडल नए मॉडल को रास्ता दे रहा है और नए अवसरों के साथ साथ चुनौतियां भी पेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि वेब्स विश्व स्तर पर विषय वस्तु तैयार करने वालों, खरीदारों और बाजार के लिए एक संपर्क के रूप में उभर रहा है। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में जनता दल यूनाइटेड के किशनगंज के जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कल उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि वक्फ कानून पर वे जनता दल यूनाइटेड के रुख से सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी को इसका समर्थन नहीं करना चाहिए था। मुजाहिद आलम पिछली बार लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे। वे पिछले 15 वर्षों से पार्टी से जुड़े हुए थे। भाजपा वक्फ संशोधन कानून के फायदों को लेकर 5 मई तक प्रदेश में अभियान चलाएगी। इसके तहत विभिन्न प्रखंडों में लोगों से सीधा संवाद किया जाएगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि वक्फ को लेकर विपक्ष लोगों को भ्रमित कर रहा है।
कि जानते हैं कि एनडीए सरकार के द्वारा वक्फ सुधार और वक्फ संशोधन कानून लाया गया और विपक्षी पार्टियों के द्वारा अलग अलग भ्रांतियां फैलाने का प्रयास किया जा रहा है और इसको धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है।
पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कल पटना में कहा कि वक्फ कानून इस्लाम के विरुद्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि यह धार्मिक नहीं बल्कि संपत्ति से जुड़ा मामला है और सरकार ने पारदर्शिता के लिए यह कानून बनाया है। इससे गरीब और पिछड़े मुसलमानों को फायदा होगा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां आज पटना में आयोजित पसमांदा कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इसका आयोजन पटना के बापू सभागार में ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हज यात्रियों के लिए हज यात्रा 2025 के दौरान एयरपोर्ट तक जाने के पूर्व आवासन, भोजन और आवागमन के लिए सभी सुविधाएं राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी मूलभूत सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था करें ताकि हज यात्रियों को किसी तरह का कष्ट न हो और उनकी यात्रा सुगमतापूर्वक सम्पन्न हो सके। मुख्यमंत्री ने कल एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में हज यात्रा 2025 की तैयारियों से संबंधित समीक्षा बैठक की और पदाधिकारियों को निर्देश दिए। श्री कुमार ने बताया कि इस वर्ष बिहार से 1391 पुरुष और 1012 महिला समेत कुल 2403 हज यात्री हज के लिए मक्का सऊदी अरब जाएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज दोपहर बक्सर के दलसागर खेल मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। श्री खड़गे आज पटना आएंगे, इसके बाद वे सीधे बक्सर रवाना हो जाएंगे। नगर विकास और आवास मंत्री जीवेश कुमार ने बेतिया नगर निगम के सभागार में समीक्षा बैठक के दौरान 9 करोड़ 77 लाख रुपए के कुल 73 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इससे जिलेवासियों को काफी सुविधा होगी।
नगर निगम की लगभग 73 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने का काम माननीय सांसद जी, महापौर, उप महापौर के साथ मिलकर हमने किया और उसकी राशि लगभग 9,77,00,000 की राशि का जो नागरिक सुविधा है वो आज जनता को समर्पित किया गया। आज उसको बहाल किया गया शिलान्यास और उद्घाटन के माध्यम से।
नगर विकास मंत्री ने कहा कि वेतिया में जल जमाव की समस्या के समाधान के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं।
यह वेतिया के लिए आने वाले दिनों में जो जल जमाव है उससे निजात दिलाने वाली योजना है और आज हमने कठोरता के साथ अधिकारियों को निर्देशित किया है। ये ससमय इस योजना को हम लोग अगले साल फरवरी में खत्म करेंगे। स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम जब बहाल हो जाएगा बेतिया में, उसके बाद वाटर लॉगिंग जो प्रमुख पुरानी बसावटें हैं उसके अंदर यहाँ के आम आवाम को उससे निजात मिलेगा।
केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा है कि न्यायपालिका में एआई की बढ़ती भूमिका के बावजूद मानव हस्तक्षेप अनिवार्य बना रहेगा। पुणे में कानून में एआई विषय पर आयोजित एक कानूनी सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मेघवाल ने ई कोर्ट्स परियोजना के तहत एक वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच के प्रस्ताव की घोषणा की। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि नोटरी से संबंधित समस्याओं का समाधान 15 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। प्रदेशवासियों को नमो भारत एक्सप्रेस ट्रेन सहित 4 नई रेलगाड़ियों की सौगात मिलेगी। इसमें मधुबनी से पटना के बीच नमो भारत, सहरसा से मुंबई तक अमृत भारत एक्सप्रेस के परिचालन का प्रस्ताव है। इसके अलावा सहरसा से सुपौल और सहरसा से समस्तीपुर के लिए 2 नए मेमू पैसेंजर ट्रेन का भी परिचालन शुरू होगा। संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को हरी झंडी दिखाकर मधुबनी से इसे रवाना करेंगे। मधुबनी से पटना के बीच यह पहली नमो भारत एक्सप्रेस ट्रेन है और यह अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में 17वें सिविल सेवा दिवस पर लोक सेवकों को संबोधित करेंगे। श्री मोदी लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए 16 प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। यह पुरस्कार जिलों के समग्र विकास, आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम और नवाचार की श्रेणियों में दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने कहा है कि स्कूलों में कक्षा 3 तक के बच्चों को स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने कहा कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 तक के बच्चों को भोजपुरी, मैथिली सहित अन्य स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाएगा। शनिवार शिक्षा संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि चेतना सत्र कार्यक्रम में बच्चों को अलग अलग प्रकार की गतिविधियां सिखाई जाएंगी। इस दौरान राष्ट्रगान, प्रार्थना और राष्ट्र भावना को जागृत करने वाली गतिविधियां बताई जाएंगी। इसके अलावा बच्चों को स्वच्छता, स्वास्थ्य रक्षा की भी जानकारी दी जाएगी।
और जो छोटे बच्चे हैं, विशेषकर क्लास 1, 2 और 3, वो अपनी मातृभाषा में ही उनको शिक्षा होनी चाहिए और चाहे वो अंग्रेजी पढ़ा रहे हों, हिंदी पढ़ा रहे हों, जब तक उनको अपनी मातृभाषा में नहीं सिखाएगा तो उनका जो लर्निंग कर्व है या लर्निंग कैपेसिटीज है वो बिल्ड नहीं होगा। क्योंकि अब तो स्थानीय मोटा मोटी अब स्थानीय ही टीचर हो गए हैं, अब बाकी लोग भी उसी जिले के हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जब भी पढ़ाएं तो अपनी भाषा जो मातृभाषा है उसमें उस बच्चे को सिखाने की कोशिश करेंगे। किताबों में जरूर यह कमी है, ये मैं एडमिट करता हूँ और ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको बनाने में मतलब मल्टीलिंगुअल किताब बनाने में समस्या लगेगी, बट टीचर कोशिश करें कि भोजपुरी है बच्चा है तो भोजपुरी में उसको सिखाएं, ए फॉर एप्पल है तो एप्पल को भोजपुरी में सिखाएं, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट है, जो भी है अपनी भाषा में सिखाएं, लेकिन ये पूर्ण रूप से अब टीचर पर निर्भर।
प्रदेश में 6 जिलों में 30 स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था 1 मई से शुरू होगी। इसके तहत शिक्षक और छात्र अपनी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज कराएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने पटना, नालंदा, वैशाली, जहानाबाद, सारण और भोजपुर में 5-5 स्कूलों में टैब दिया गया है। इसके अलावा मिड डे मील की भी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग की जाएगी। बेगूसराय में एक पैसेंजर ट्रेन आग लगने से बड़ी दुर्घटना का शिकार होते होते बाल बाल बच गई। तिलरस से जमालपुर जा रहे डीएमयू पैसेंजर ट्रेन में दनौली फुलवरिया के पास आग लग गई। ट्रेन के चालक ने घटना की जानकारी देते ही रेलगाड़ी को रोक दिया और आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता में कमी आने से प्रदेश में एक बार फिर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम भागों के एक दो स्थानों पर हल्की बारिश और उत्तर पूर्व के कुछ स्थानों में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया में एक दो स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है।
अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के एक दो स्थानों एवं उत्तर पूर्व भाग के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है एवं पश्चिमी चंपारण, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया के एक या दो स्थानों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर घंटा की गति से चलने की संभावना है। अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है।
मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य के दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में 23 अप्रैल से गर्मी में बढ़ोतरी की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर लू जैसी स्थिति हो सकती है। अररिया जिले के फरबिसगंज प्रखंड क्षेत्र के मानिकपुर पंचायत के अमरौरी में अचानक भीषण आग लग गई। अगलगी की घटना में लाखों की संपत्ति सहित कई घर जलकर नष्ट हो गए हैं। अग्निशमन विभाग की 4 दमकल की गाड़ियों से आग पर काबू पाया गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। कटिहार रेल पुलिस और आरपीएफ ने संयुक्त अभियान चलाकर कटिहार रेलवे स्टेशन परिसर से नशाखुरानी गिरोह के मुख्य सरगना मोहम्मद सलमान सब्जी को गिरफ्तार किया है। साथ ही रेलवे सुरक्षा बल ने मोबाइल चोर गिरोह के 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों में अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मनरेगा मजदूरों को बकाया राशि जल्द, केंद्र सरकार ने बिहार का बकाया 2102 करोड़ रुपए आवंटित किया। दैनिक जागरण ने लिखा है, प्रदेश से 2403 हज यात्री जाएंगे मक्का। दैनिक भास्कर ने आईपीएल की खबर को अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुए लिखा है, 14 साल के समस्तीपुर के वैभव आईपीएल के सबसे युवा खिलाड़ी, पहली ही गेंद पर मारा छक्का। प्रभात खबर ने जेई मेंस की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अखबार लिखता है, बेगूसराय के हर्ष को 100%, मधुबनी के अब्दुल्ला बने स्टेट टॉपर। राष्ट्रीय सहारा ने विशेष स्टोरी प्रकाशित करते हुए लिखा है, सियाचिन ग्लेशियर में तैनात सैनिक वीर अब मोबाइल नेटवर्क में। दैनिक आज लिखता है, पटना में रात 10 बजे के बाद नहीं चलेगा बैंड बाजा बारात। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने मनरेगा के मजदूरों को बकाया भुगतान के लिए 2100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में किशनगंज से जदयू के जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने अपने समर्थकों के साथ पार्टी से इस्तीफा दिया। भाजपा वक्फ संशोधन कानून के फायदों को लेकर 5 मई तक अभियान चलाएगी। विभिन्न प्रखंडों में लोगों से सीधा संवाद किया जाएगा। और रेलवे ने मधुबनी से पटना के बीच नमो भारत एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन को मंजूरी दी। सहरसा से मुंबई के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस भी चलेगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।